मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन द्वारा ग्लैडिस पेरिजिक्लियन पर गहरी जांच, विक्टोरिया के 1600 से अधिक कोविड 19 मामलों में एक तिहाई से अधिक 20 वर्ष से कम आयु के, और भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स की पूर्व प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन का कहना है कि अगर उन्हें फिर से समय मिलता तो पूर्व लिबरल सांसद डैरेन मैग्वायर के साथ अपने गुप्त संबंधों का खुलासा नहीं करती। भ्रष्टाचार जांच में इस बात की जांच हो रही है कि कैसे सुश्री पेरिजिक्लियन ने पूर्व वागा वागा सांसद द्वारा पैरवी की गई परियोजनाओं में उनके निजी संबंधों ने प्रभावित किया होगा। पूछताछ में इस जोड़ी के बीच कई फोन कॉल्स सुनी गईं। एक कॉल में सुश्री पेरिजिक्लियन द्वारा श्री मैग्वायर को ये कहते हुए सुना गया कि उन्होंने उनके मतदान क्षेत्र में एक अस्पताल के लिए 5 मिनट में $170 मिलियन दिलवा दिए। जनसुनवाई में 2 अनुदानों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके लिए श्री मैग्वायर ने पैरवी की थी, जिसमें क्ले टारगेट शूटिंग क्लब के लिए $5.5 मिलियन का अपग्रेड और एक रिसाइटल हॉल बनाने के लिए $20.5 मिलियन की योजना शामिल है। सुश्री पेरिजिक्लियन और श्री मैग्वायर ने पुष्टि की कि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। सुश्री पेरिजिक्लियन ने कहा,
We didn't share finances. We didn't live together. I was not confident in his level of commitment. I did not regard him as a member of my family, and I did not regard there to be any impact on my public responsibility, and I did not think the relationship had a sufficient status for me to disclose it.
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरेट का कहना है कि वो आचार्य संहिता में बदलाव के बारे में सलाह लेंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मंत्रियों को अपने संबंधों की घोषणा करनी चाहिए।
We want to make sure that ministers clearly understand their responsibilities and their obligations in relation to the code, and if changes need to be made or further clarity needs to be provided, we'll do that.
न्यू साउथ वेल्स अपनी 16 से अधिक आबादी के 90% को पूरी तरह से टीका लगाने के करीब पहुंच रहा है। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जेरेमी मैक्वेंटी का कहना है कि 86% से अधिक लोगों को अब 2 कोविड शॉट मिले हैं। राज्य ने कोविड 19 के 268 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामले और 2 मौतें दर्ज की हैं। नवीनतम रिपोर्टिंग अवधि में 82,000 से अधिक परीक्षण किए गए। विक्टोरिया ने 70,000 परीक्षणों में 1656 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोविड 19 मामले दर्ज किए हैं और 100 मौतें भी हुई हैं। राज्य प्रतिबंधों को और आसान बनाने के लिए तैयार हो रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 23,730 है और ताज़ा प्रकोप से मरने वालों की संख्या 282 है। रिपोर्ट किए गए मामलों में से एक तिहाई से अधिक 20 वर्ष से कम आयु के लोगों में पाए गए। मेलबर्न और क्षेत्रों के बीच सीमा प्रतिबंधों में आज शाम 6 बजे से ढील दी जा रही है। बाहर मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। इंडोर मनोरंजन स्थल, जिम और रिटेल पूरी तरह से टीकाकरण वाले संरक्षणों के लिए फिर से खुल सकते हैं और रेस्टोरेंट, पब और कैफे के लिए क्षमता सीमा भी बढ़ जाएगी। राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रोफेसर ब्रेट सटन ने राज्य निवासियों को ये संदेश जारी किया।
Many of us have waited a long, long time for so many of the things that we're going to be able to do, to travel to regional Victoria, to have family reunions take place, to enjoy a long weekend, and of course enjoy some live music and some cultural events in days ahead, the things that make Victoria so special.
विक्टोरियन बचाव पक्ष के वकील द्वारा नए सिरे से नियमों में बदलाव का आग्रह किया गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिना टीकाकरण वाले लोग जूरी पर काम नहीं कर सकते। फेडरल सरकार अस्पतालों से बाहर कोविड पीड़ितों की देखभाल पर $180 मिलियन खर्च करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि इसमें जीपी का समर्थन करना है क्योंकि वे अपने समुदाय में कोविड रोगियों का इलाज करते हैं जिससे लोग अपने घरों में इलाज कर सकेंगे। पैकेज में टेली हेल्थ परामर्श के लिए अतिरिक्त धन, रोगियों की स्थिति की निगरानी के लिए उपकरण और फार्मेसियों के लिए सहायता शामिल है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स के अध्यक्ष डॉ. कैरन प्राइस ने पैकेज का स्वागत किया है।
We're looking forward to this because it also signals a new era in what I would call an integrated health system, where the state health system, which is largely hospital based, and the community health system, which is GP and practice nurse based, are working together for Australia's health system, which has been a really historic event coming out of a international pandemic. If there is a silver lining, I hope that's one that will continue.
Immigration Detention Centre पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की कमी, अपर्याप्त सफाई और धीमी वैक्सीन प्रतीक्षा समय आदि सहित कोविड सुरक्षित उपायों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मेलबर्न के पार्क होटल अल्टरनेटिव प्लेस ऑफ डिटेंशन में 46 डिटेनीज में से आधों ने कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। फेडरल सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में शरण चढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने का मौका मिला है, लेकिन एसाइलम सीकर रिसोर्स सेंटर के एडवोकेसी डायरेक्टर जाना फेवरोव का कहना है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
The Australian government has shown that it's ideologically opposed to people seeking safety on our shores, and so there was no will for them. It's quite remarkable that it seems as if the lives of refugees aren't regarded the same as others. If we had seen, you know, 50% of an aged care facility or a facility where there was hotel quarantine of the population contracting COVID-19, there'd be a national outcry. It would be on the front pages of papers, but here it hasn't been.
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ऑटिज्म सपोर्ट ग्रुप ने ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को उनके कोविड-19 शॉट्स प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका तैयार की है। एमेज का कहना है कि टीकाकरण प्रक्रिया उनके लिए कुछ चिंता पैदा कर सकती है। इसमें सुई के प्रति फोबिया, घनी आबादी वाले केंद्रों से जुड़ा तनाव और गोपनीयता की कमी कुछ ऐसी चिंताएँ हैं जिनका अनुभव किया जाता है। एमएज के सीईओ जिम मुलिन का कहना है कि सामाजिक लिपियों की एक श्रृंखला के माध्यम से समर्थन उपलब्ध है। संगठन ने इसे ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को टीकाकरण प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए विकसित किया है।
Before they arrive at a vaccination hub, they have a complete understanding of the steps involved in the process that they're going to walk through in it. And we've done that now in 10 languages currently for a range of settings, including hubs, but also including pop-up clinics and other approaches.
और विक्टोरिया में आंधी तूफान और बेमौसमी हवा चलने के बाद हजारों विक्टोरियन आज सुबह बिना बिजली से जागे हैं। विक्टोरियन स्टेट इमरजेंसी सर्विस को आज शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे तक 950 से अधिक कॉल्स मिली। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बैलरैट, बेंडिगो और मेलबर्न के पूर्वी उपनगर शामिल हैं। पेड़ों के गिरने और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें थीं और ये आंकड़े बढ़ने की उम्मीद है। 1 लाख से अधिक घरों में बिजली नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे पर आज रोम पहुंचे हैं। श्री मोदी रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो G20 के नेताओं के साथ कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु पर COP26 वर्ल्ड लीडर समिट में शामिल होंगे। और भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,348 नए मामले सामने आए। वैसे देश में रिकवरी रेट यानी संक्रमण मुक्त होने की दर 98.19% है और साप्ताहिक संक्रमण दर 1.18% पर है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 75 सेंट और भारत के ₹56.48 के बराबर है। खेल समाचारों में सॉकरूज 2 साल से अधिक समय के बाद घरेलू धरती पर अपना पहला मैच खेलेंगे। सऊदी अरब के खिलाफ महत्वपूर्ण विश्व कप क्वालिफायर सिडनी में नवंबर में खेला जाएगा। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की कि 11 नवंबर को सऊदी के खिलाफ ये मैच खेला जाएगा। अक्टूबर 2019 के बाद ये ऑस्ट्रेलिया का पहला घरेलू मैच होगा। कैनबरा में टीम ने कोविड महामारी से पहले नेपाल को हराया था। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।